और इन्होंने नरसिंह महाराज को पूज्यपाद नरसिंह महाराज जी थे जो गुरु महाराज जी के साथ करते थे, हमारे पूज्यपाद बामन महाराज जी के
चाचा जी
चाचा लगते थे। अरण्य महाराज ने कहा और नरसिंह ब्रह्मचारी छिलन कर तो भालो भालो देखे प्रभु इसकी हो तुम्हें नहीं आमी आमी जा बोली 50 ईंट मंगाई मतलब ये सादा कागज नहीं है आने अखबार कागज नहीं है लगते तार पर लिख लें जैसे ऋग्वेद एक लिख लें सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद श्रीमद् भागवत इत्यादि उपनिषद छांदोग्य तैतरीय इत्यादि सब बोली नाम लिखे दिए बोले जैसे गोरुगाड़ी एक टनिया गोरुगाड़ी जैसे तार पर सब लदाई कर दिए सभागृह दिए बोले सजाए एखन ते सजिए दिए ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद आर कोई सब सबली हम यही थी कि प्रमाण दिया ये कोई बुरी थे कि देखिए तो तुम आते थे और जब हम आरंभ कर रहे थे तो अरे विद्वान सब बुरी पलाई थी आरंभ कर रहे थे सब आतारिक थे कि आज वाले हम लोग बहुत प्रमाण दे
चंद्राय राधिका ये चलाले ये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ता जननो
पूज्य पाद महाराज जी ने बंगला में बोला है, मैं हिंदी में बोलता हूँ जिसे सब लोग मेरी हिंदी भी बंगाली लोग सब बंगला भाषी लोग समझ सकते हैं। जहाँ पर हम लोग आए हैं इस स्थान को अष्ट शंभु मंदिर कहते हैं। जहाँ पर हम लोग पहले गए थे अष्ट शंभु ये चैतन्य महाप्रभु जी के समसामयिक या उससे पहले की प्राचीन विग्रह हैं। वैष्णवानंग यथासंभव वैष्णव में शंभु अग्रगण्य हैं श्रीमद्भागवत इत्यादि में देखते हैं। विशेष करके ब्रज में हम देखते हैं वहाँ पे भी गोपीश्वर महादेव के रूप में हैं और बिना वहाँ पर उनके दर्शन कर के ब्रज में प्रवेश करना कहा गया है जो वो सुविधा नहीं होती। वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मौले सनक सनंदन सनातन नारदेव गोपीश्वर ब्रज विलास युगांग्रि पद में प्रेम प्रयच्छ निरुपाधि प्रेम प्रयच्छ अर्थात तो आप कृपा करके हमको दे। यही नहीं रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी वर्णन किया है गोपियां कहती हैं वो सबको कृष्ण प्रेम देने वाले हैं गोपी प्रेम देने वाले हैं। ऐसे हम लोग शंभु का यहाँ दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर शंभु अकेले नहीं हैं यहाँ पर आठ रूप में अपने इष्ट देव की सेवा कर रहे हैं। उनके इष्ट देव कौन हैं यहाँ पर दो हैं एक रसिक राय जी हैं इसके अंदर में और एक है राधाकांत। इन दोनों का विजय विग्रह ये माना जाता है। राधाकांत कौन है राधाकांत नमस्तुते हे कृष्ण करुणा सिंधु भक्त को इससे रुचि अधिक नहीं हुई मन प्रफुल्लित नहीं हुआ हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो दीनों के वो बंधु फिर भी मन उतना प्रसन्न नहीं हुआ दीन बंधो जगत पते अर्थात ये जगन्नाथ फिर भी मन उतना प्रसन्न नहीं तब फिर कहते हैं जगतपते गोपेश गोपों के ईश कुछ कुछ इहो है किंतु आगे कहा है गोपेश गोपिका कांता हाँ बहुत सुंदर है किंतु और आगे बढ़िए तब राधा कांत ये राधा कांत जी यहाँ पर विराजमान बड़ी मुश्किल से प्रताप रुद्र राजा जी के पिता पुरुषोत्तम जाना जी इस राधाकांत को राधाकांत जी पहले वृंदावन में और वृंदावन से चले आए दक्षिण देश में गोदावरी के तट में विजय नगरी में चले आए और वहां से भंड गणेश को परास्त करके कृष्ण स्वयं बलदेव जी और राधाकांत को वहां पे राधाकांत वहां नहीं रहेंगे यहाँ रहेंगे इसलिए ले आकर के महाप्रभु जी जिस गंभीरा में रहते थे वहां पर उनको प्रतिष्ठित किया और उन्हीं का बीजा बीगा एक राधा कांत जी यहाँ पर पधारे हैं। शंकर जी बोले जी हमारे परम आराध्य हैं, मैं समझूंगा जी यही वृंदावन है, यहीं पर हम उनको रखें। इसलिए राधा कांत जी की यहाँ पर सेवा करते हैं। आठ रूपों में एक रूप से उनको नहीं हुआ, मुझे आठ रूप में हम सेवा करेंगे, इसलिए आठ रूपों में उनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरी बात, रसिक राय जी यहाँ हैं। ये रसिक राय जी कौन है? रसिक कौन है? कृष्ण रसस्वरूप भी हैं और रसिक भी हैं। जब गोपियां रहती हैं तो यह रसिक बन जाते हैं, ऐसे यह रसपूर्ण है, ये रस ही हैं, किंतु वहां पर यह रसिक बन जाते हैं। इसलिए रस स्वरूप और रसिक दोनों इनका स्वरूप है। जब रसिक बनते हैं तो रसराज महाभाव दोनों मिलकर के एक हो जाता है, तब वो
रसिक
रसिक राय जी। इन्होंने कहा शंभू जी ने, जैसे हम रसिक राय जी की उपासना, ये रसिक राय जी कैसे आए यहाँ? पहले जयपुर में, पहले तो रहते थे वृंदावन में, वृंदावन से कोई भक्त अत्यंत भक्त वो ले गया जयपुर में, वो गुप्त वृंदावन है, वहाँ पर उनकी रसिक राय जी की सेवा होती थी। रसिक राय जी का घेरा वहाँ पर अभी भी है गोविंद मंदिर जी के पास में। महाप्रभु के बाद में जब गंगा माता जी, गंगा माता मैंने गोस्वामिनी सची देवी, जब वहां से अपने गुरु के आदेश से जबकि यहां पर आई सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान में और उसको प्रकाश करना आरंभ किया, तो वहां पर स्वप्न हुआ उस रसिक राय जी के भक्त को, पुजारी को, तुम जल्दी से हमको इस समय में पहुंचा दो जगन्नाथपुरी में, और वहाँ पर गंगा माता ठाकुरानी हैं, परम भक्त है, मैं उस समय उन्हीं की सेवा ग्रहण करूँगा, और यदि नहीं पहुँचाया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे वंश के साथ, जल्दी से करो, आज ही रात में यहाँ से ले चलो। उस समय कोई भी जाने आने का कोई रास्ता नहीं था, एक टोकरी में रसिक राय जी को लेकर के और वहाँ से चल दिए। घूमते घूमते बहुत दिन हो गए चलते फिरते, जब यहाँ आए तो गंगा माता जी से मिले और बोले जब मैं इस विग्रह को आपके हाथों में देना चाहता हूँ, आप इनकी सेवा करें क्योंकि ये स्वप्न हमको दिए हैं, यदि तुम नहीं ले जाएगा तो तुम्हारे वंश को ध्वंस कर देंगे, इसलिए तुम ले जाओ और अपनी ये विग्रह सेवा करो। उन्हें बोल जी आमी तो निष्किंचन, अमर काछे एकटी पैसा नहीं, आर इनी रसिक राज इनार विराट राजभवने ते तार सेवा होवे, आमी सेवा करते पारबा, मैं इनकी सेवा नहीं कर सकता, हमारे पास में कुछ नहीं है, मैं भिखारी हूँ, हम तो एक मड़ैया बांध दिया है हमने कुटी और उसी के अंदर में रहती हैं, हम ठाकुर जी कहूँ को 5 बार 56 बार भोग चाहिए मैं कहाँ से दूंगी, मेरे लिए संभव पर नहीं है, मैं तो केवल हरिनाम करता हूँ करती हूँ और भाव सेवा करती हूँ, हमारे द्वारा श्री विग्रह की सेवा संभव पर नहीं है। कहा जी अब क्या करें, और रात में ठाकुर जी को वहाँ पर तुलसी कानून सामने में था, उसी में उनको रख दिया रसिक राय जी को और भाग करके चला गया जयपुर पैदल। अब एक दो दिन हो गया, रात में सोई थी तो ठाकुर रसिक राय जी ने कहा हम तो तुम्हारी सेवा लेने के लिए मैं यहाँ आया, मैं सोच रहा था बरसों से जो तुम्हारे पास में चलूँ तू हमारी सेवा करेगी, और तुम्हारे पास में आया तुमने हमको प्रत्याख्यान कर दिया, सेवा तुमने नहीं हमारी ग्रहण की, देखो मैं तुम्हारे तुलसी जी के बगीचे में पड़ा हुआ, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं स्नान नहीं किया, जल्दी से हमको तुम ले चलो और हमारी सेवा करो, तुम्हारी सेवा के लिए मैं भूखा हूँ। इनकी नींद खुली और गई तो देखा तो वहीं पर खड़े हैं तुलसी कानन में, बस उनको ले करके अपने हृदय से लगा लिया और ले करके अपनी कुटी में ही उनको रखा और उनकी सेवा कर। पीछे से राजा उनके शिष्य हो गए गंगा माता जी की ठाकुरानी की, और उनके जितने बड़े बड़े पुजारी और बड़े बड़े लोग थे सब लोग उनके पास में शिष्य हुए। सार्वभौम भट्टाचार्य का गृह मंदिर के रूप में सुसज्जित रूप में बनाया गया भवन रूप में, और उनको लिए मंदिर बना, उसी मंदिर में अभी रसिक राज जी हैं, उनका विजय विग्रह जी यहाँ पर हैं, इनको भी ये कौन शंभु अश्व शंभु जी इनकी सेवा। संक्षेप में यह है, अभी महाराज जी ने बतलाया ये पुरुषोत्तम महीना है, आप लोगों का परम सौभाग्य है जो पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम व्रत के समय में पुरुषोत्तम जी की सेवा करने के लिए आप लोग और उनकी कथा सुनने के लिए इस पुरुषोत्तम धाम में आप लोग पधारी हैं और पधारे हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। साधारण रूप में मलमास उसको कहते हैं, ये चंद्र और सूर्य दो प्रकार से गणना होती है, जिसमें हम लोग प्रधान रूप में चंद्र रूप में गणना करके और तिथि के अनुसार में हम लोग अपना पर्व मानते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी और एकादशी, ये सब तिथियों के अनुसार में हम लोग सब पालन करते हैं। इसके गणना के अनुसार में कुछ भेद होता है दोनों में, दो वर्ष माने अढ़ाई वर्ष और कुछ दिन मिला करके एक महीने का अंतर हो जाता है इन दोनों में, सूर्य गणना और चंद्र गणना में, जिसको अंग्रेजी में लीप ईयर कहते हैं। इसलिए उसको पूरा करने के लिए हमारे यहाँ भारतवर्ष में स्मार्ट ब्राह्मणों की प्रधानता थी, उन लोगों ने इसको मल मास कहा, जो महीनों का ये मल है, मल माने मैला, और इस महीने में कोई भी शुभ कर्म नहीं होगा, कोई भी शुभ कर्म नहीं होना चाहिए इसमें, विवाह शादी यज्ञ इत्यादि और यहाँ तक कि भगवत भजन भी इसमें नहीं होगा। तो ये प्रत्येक महीनों के अधिष्ठात्री देवता होते हैं, जैसे कार्तिक महीने की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधिका हैं, और महीनों के भी और लोग हैं। ये मलमास बड़ा दुखी हुआ और नारायण के पास में गया, नारायण जी उसको लेकर के कृष्ण के पास में गए, कृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, उन्होंने बतलाया कि क्षर और अक्षर और पुरुषोत्तम, क्षर माने जो बद्ध जीव हैं, जो भगवान को भूल करके आए वो क्षर हैं, और अक्षर में दो को बतलाया गया, जो अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हैं, ये दो हुए जो कि नित्य मुक्त जीव, और उनके भी ऊपर वाले हो गए भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा, किंतु दोनों ही अपने स्वभाव से खरित नहीं होते हैं, और इनसे ही ऊपर पुरुषोत्तम है, वो पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण है। तब उसमें कृष्ण में भी अब वो द्वारकाधीश हैं कि मथुरेश हैं कि ब्रजेश हैं कि राधाकांत हैं, ये सब विचार पीछे महाराज जी ये सब बतलाएंगे। पुरुषोत्तम से कहने से केवल महाभारत के युद्ध में जो जो युद्ध किया अधिकांश रूप में उन्हीं को ही समझा जाता है। उनके पास में गए और रोने लगा वो, तो उन्होंने कहा जे देखो तुम हमारे पास में आए हो, मैं पतित पावन हूं, इसलिए आज से मैं अपना नाम तुमको दे दिया, और तुम्हारे इस महीने का मैं अधिष्ठात्री देवता हुआ, इस महीने में जो थोड़ा सा भी भजन करेंगे पूजन करेंगे हमारा नाम लेंगे और इस हमारे धाम में आएंगे व्रत करेंगे, उसके द्वारा हमारा प्रेम उनको प्राप्त होगा, तुम साधारण नहीं रहोगे, समस्त महीनों के तुम अभीश्वर बनोगे, किंतु एक को बात दे करके, वो एक महीना क्या है, वो कार्तिक ऊर्जेश्वरी श्रीमती राधिका जी जिसकी अधिष्ठात्री हैं वो हैं। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम महीने में हम लोग यहाँ पर आए हैं पुरुषोत्तम व्रत करने के लिए, पुरुषोत्तम धाम में पुरुषोत्तम जी के निकट में आए हैं, इसलिए सचमुच में आप सब लोगों का बड़ा भारी सौभाग्य है। और उसमें भी पूज्यपाद भक्ति जीवन भक्ति के जीवन स्वरूप जनार्दन महाराज जी, इधर में हमारे वाग्मी प्रधान भारती महाराज जी, पूज्यपाद तीन जिनके विक्रम है वो महाराज जी, ऐसे ऐसे महाराज लोग हैं, और कीर्तन राग भूषण कोई है, कोई कैसे वैष्णव लोग भी, ये सब लोग साधारण नहीं मत समझना, और हम लोग भी आप लोगों को साधारण नहीं समझते हैं। हम मैं तो सचमुच में सब आप लोगों का संग पाने के लिए आया, और इसमें भी हमारा सोने में सुगंध हो गया जी, ऐसे ऐसे महाराज वह जो भक्ति के अगर महारथी हैं उनका भी कुछ हरि कथा सुनने को मिलेगा। इसी लालसा से मैं यहाँ पर आया। मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन जरूर तीर्थार्थ होगा। ये यहाँ पर अष्ट शंभु जी और महाराज लोग और आप सभी लोग हमारे ऊपर में कृपा करें, जो राधा गोविंद जी के विशेष करके श्रीमती राधिका जी की करुणा का एक कण भी मुझको मिल जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। गौ प्रमाण श्री आनंद प्रभु जी हैं, प्रताप रुद्र के समय में उन्हीं के द्वारा प्रतिष्ठित कराया हुआ विग्रह है, और यहीं पर वो जो नाम बतलाया वो सब विग्रह भी यहीं पर है, और भी देवता है किंतु प्रधान यही सब है। एक बात मैं कहना भूल गया, ये भूल गया, हम लोगों के साथ में जो चल रहे हैं ना, जो यहाँ पर ले आए आगे आगे हम लोगों को लेकर के, वो सिंघानिया परिवार इस मंदिर का काया पलट कर दिया। हम लोग जब आए तो इसका जितना बरसात का पानी सब बाहर में नहीं जाता था, वो सब पानी भीतर ही में आता था। ठाकुर जी रोज रोज बरसात में स्नान करते थे वहीं पर। उन्होंने कहा जी भाई हमको शीत लगती है, थोड़ी सी कुछ व्यवस्था तो कराओ। तो यहाँ के जो पुरी के जो राजा हैं, जो कि झाड़ू देते हैं ठाकुर जी के सामने, उन्हीं के अधीन में ये इसकी सेवा पूजा है। तो वो किसी प्रकार से सुना ये बड़े उदार संघानिया परिवार है, अपनी औकात से अधिक सेवा करता है, टाटा बिरला और बड़े बड़े धनी लोग हैं वो सब सेवा ऐसी नहीं करते हैं। उनका नाम रखेंगे डालमिया जी का मंदिर, रखेंगे बिरला मंदिर, वो अपने अपने नाम पर मंदिर रखेंगे। ठाकुर जी का सेवा का ये सब कुछ नहीं, जो तो कुछ करेंगे तो उसमें अपना स्वार्थ, किंतु ये सब एक बार निष्काम कृष्ण प्रेम चाहने वाले ऐसे सिंघानिया परिवार यहाँ पर जितने भी मंदिर है सबकी सेवा करते हैं। हमारे मठ में, इनके मठ में, इनके मठ में जो कुछ वैभव देख रहे हैं प्राय अधिकांश ये सिंघानिया जी की सब सेवा है। तो उन्होंने जाकर के महाराज जी खुद महाराज जाकर के इनके पास में बोले, जैसे हमारे संभव हमारे लिए समय, हमारा तो राज्य ही सब गवर्नमेंट ने ले लिया, हम लोग काना कौड़ी समय, आप यदि कुछ इसकी सेवा कर सकें। तो उन्होंने ये सब बदल करके एकदम नया कर दिया। ठाकुर जी जब ये लोग आए सिंघानिया जब देखने के लिए, तो गौर नित्यानंद जी नंगे खड़े थे, नंगे ऐसे नाच रहे थे, प्रेम में भी खोर होकर, कपड़ा नीचे गिर गया था, कपड़ा था ही नहीं। सिंघानिया जी को देखा जैसे एक सेवा का सो, जब कपड़ा नया नया ले आ करके फिर कपड़ा पहनाया, मंदिर बनाया और सब व्यवस्था की, अष्ट शंभु जी का भी। तब देखा जाए ये सब हो गया, तो इनके बड़े भाई आए देखने के लिए, अरे सब हो गया अष्ट शंभु जी, ये तो भक्त है, इनका नहीं मंदिर हुआ, अच्छा इनका भी कर दो। तो इनका उनका भी मंदिर पीछे से हो गया। इस तरह से जहां जहां भी ये लोग हैं, हम लोगों का मथुरा में, खड़गपुर में, यहाँ पर प्रभुपाद जी का जो मंदिर है वहां पर भी इनका बहुत अवदान है। और कितना हम उनकी प्रशंसा करें, उनको आप लोग सभी लोग आशीर्वाद करेंगे, जो उनको महाप्रभु जी का जो प्रेम है, उनकी सेवा है, उनको प्राप्त हो, उन वंश के ऊपर में उनकी कृपा हो। यही पर कह करके अपना भक्त को समाप्त करता हूं।
सूर्य के एक साथ में जीवन लड़का हुआ है, लड़का का नाम जम और लड़की का नाम जमी, जमी माने जमुना। जखन बड़ो हो तो जखन एक बार जमुना देवी बोलें कि भाई यदि क्यों लोग हमार शरणागत है, हमार नाम करे तो तुम्हें पासपोर्ट मिले, आज जब जमपुरी कहना जमुना शरणागत बोले आज जमपुरी ते जेते हैं, जमपुरी में नहीं जाना बोले। तोता माने कहते हैं तोता अथवा तोता माने बागान, बगीचे को तोता अथवा तोता कहते हैं। जम ईश्वर, जम के भी जो ईश्वर हैं उनको भी कंट्रोल करने वाले हैं, उनको जमेश्वर तोता कहते हैं। जमेश्वर माने शंकर महादेव, जमेरु ईश्वर, तिनी जम के कंट्रोल करें, जम को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं? यहाँ कोई व्यक्ति आए इस धाम में, शंख क्षेत्र में, अथवा ये शंख के समान ये क्षेत्र है, अथवा क्षेत्रमंडल भुवनेश्वर से लेकर के ये तट तक लेकर के और नील माधव इत्यादि सब मिला करके ये श्री क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में कोई आए तो शंकर जी कहते हैं कि जम तुम दूर रहना, यहाँ से कोई मरने वाला जैसे भी आए मर जाए, इस धाम में वास करे तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये सब हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारे प्रभु के कंट्रोल में रहेगा। इसलिए जम यहाँ पर कोई कुकर्म इत्यादि का विचार नहीं करते, नरक नहीं दे पाते, क्योंकि शंकर जी जम के भी मालिक यहाँ पर हैं। दूसरी बात, सूर्य भगवान के, भगवान के बहुत ही बड़े एक साधक हैं सूर्य, उनको शास्त्र में कहीं कहीं भगवान भी कहा गया है। सूर्य भगवत भक्त हैं। सूर्य में जो तेज देखा जाता है वो राधिका जी का तेज है। भर्ग देवस्य, देवस्य माने कृष्ण देवस्य, भर्ग तेज शक्ति श्रीमती राधिका। इसलिए सूर्य में भी जो कुछ भी शक्ति देखते हैं प्रकाश करने का, ये सब शक्ति देवकी माने कृष्ण की शक्ति अर्थात श्रीमती राधिका जी की किसी प्रकार से आभास समझो, पूर्ण शक्ति नहीं आभास। तो सूर्य जी भगवत भक्त हैं। सूर्य ने बहुत दिन आराधना की जो हमको लड़का और एक लड़की हो और दोनों परम वैष्णव वैष्णवी हो, तो उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको एक जमज पुत्र दिया और कन्या। जमज माने एक साथ में ही दोनों का जन्म हुआ। लड़का जरा पहले निकला गर्भ से और लड़की निकली पीछे। लड़के का नाम हुआ जम और लड़की का नाम हुआ जमी। यही जमी ही से जमुना जी हैं। तो ये लोग परस्पर खेलते थे भाई बहन, थोड़ा सा बड़े हो गए तो बहन ने जम को कहा, भाई को,
भैया
जे भैया यदि कोई भूल करके भी हमारे शरणागत हो जाए, हमारे प्रति शरण ग्रहण करे, भैया उनको तुम नरक में मत ले जाना, उनको भगवान के चरणों में देकर के बैकुंठ हो जाएगा। विशेष करके जिस दिन हम दोनों का जन्म हुआ है उस जन्म के दिन में यदि कोई जमुना में स्नान करे, जमुना का स्मरण करे, जमुना जी को प्रणाम करे, हमको कोई प्रणाम, उस दिन भ्रातृ
भैया दूज
के दिन, भैया दूज के दिन यदि कोई स्नान करे स्मरण करे तो उनको आप कभी भी उनके बुरे कर्मों का दंड देने के लिए नरक में मत ले जाओ। राजा अच्छा बहाना ऐसा ही करूंगा। ये जम का नाम है धर्मराज। जम मने दुष्टों को दमन करते हैं ऐसा ही नहीं, उनको दंड दे करके शुद्ध करके भगवत भक्ति के लायक बनाते हैं, इसलिए इनका नाम है धर्मराज। और द्वादश महाजनों में एक ये भी हैं। यदि द्वादश एक महाजन नहीं होते, केवल दंड ही देते तो वो नरक में रह करके नरकवासियों का अधिनायक है, बस इतना ही तो होता, किंतु ऐसा नहीं। ये भगवत तत्व भक्ति की कथा सब जानते हैं ये जम्मा। और उनके ईश्वर जो हैं
वो कैसे होंगे? इसलिए ये इस पूरी धाम में या वृंदावन धाम में या जितने भी धाम हैं वहाँ पर शंकर जी क्षेत्रपाल के रूप में, धर्म क्षेत्र के रक्षक के रूप में वो जरूर रहेंगे। इसलिए वृंदावन में गोपीश्वर महादेव, मथुरा में भूतेश्वर, गोकर्णेश्वर,
रंगेश्वर
और पिपलेश्वर, कामवन में कामेश्वर,
नंदगा में नंदीश्वर,
जरूर चकलेश्वर, गोवर्धन में जरूर रहेंगे। इसलिए इस धाम में भी बहुत रूप धारण करके कभी लोकनाथ के रूप में, यहाँ एक तरफ में जमेश्वर के रूप में, हाँ कितने सब जगह रह करके धाम की रक्षा करते हैं, जगन्नाथ जी की यहाँ पर सेवा करते हैं और कोई उत्पात न मचाए इसलिए उसको कंट्रोल करते हैं। ये जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए तो अपने अपने उनके अपने भक्तों को अलग अलग स्थान दिया, एक जगह नहीं, अन्यथा एक जगह रहेगा तो क्या होगा, झगड़ा करेगा। जैसे दो लड़कियां एक साथ में महिलाएं नहीं रहेंगी, वो जरूर झगड़ा करेंगी। चाहे भक्त का बाबा भी हो ना, यदि हो जाए तो जरूर लकड़ी में लकड़ी बजेगी, कोई मना नहीं। और हम लोगों में भी सन्यासी अधिक सन्यासी गाजन नष्ट वो हबे। ये जन महाप्रभु बोलेंगे जैसे तुम्हारा एक खाने आसबे हमारे यहाँ आना, तो महाप्रभु जी ने ये विचार करके कहा अधिक लोग रहेंगे तो बातचीत करेंगे, भजन होगा नहीं, नाम पूरा नहीं संख्या होगी और हरि कथा आलोचना नहीं होगी, इसलिए इनको अलग अलग स्थान दे दो। इसलिए स्वरूप दामोदर जी रहते थे सतासन आश्रम में और रघुनाथ दास गोस्वामी को दे दिया जो उनकी सेवा भी करेंगे, उनसे हरि कथा सुनेंगे। और गदाधर पंडित
टोटा गोपीनाथ,
ये टोटा गोपीनाथ के उन्हीं के बगीचे में उनको स्थान दिया। कहते हैं कि बहुत निकट था, हम तो देखते हैं कि दूर है ना, थोड़ा सा आध माइल होगा, आध माइल होगा ना, एक माइल, एक मिनट, दो मिनट, ना ना ये नहीं, तो वहां से इनको स्थान दिया गदाधर पंडित जी को अकेला इसी बगीचे में रख करके दिन रात हरि भजन।
रामानंद जगन्नाथ वल्लभ
उद्यान, रामानंद को दे दिया
जगन्नाथ वल्लभ उद्यान,
जगन्नाथ वल्लभ। और परमानंदपुरी को कहां दिया,
परमानंदपुरी
जहां पर कुप है उधर में। इसी तरह से हरिदास ठाकुर को कहां दिया, पासी में, वहां पर सिद्ध बकुल में दिया। किसी को वहाँ पर रहने नहीं देते थे, रहते थे कौन, अपने आप वहाँ पर रहते थे गंभीरा में, और उनके साथ में गोविंद वो रहता था, कोई और नहीं रहता था। कभी कभी रात में स्वरूप दामोदर राय रामानंद सिखी मायती इत्यादि आ जाते, वो लोग भी महाप्रभु को खूब रुला करके भावाविष करके फिर वो लोग चले जाते। गोविंद कहता था ये क्यों आते हैं यहाँ हमारे प्रभु को रुलाने के लिए, जब ही आते हैं ये लोग तो महाप्रभु जी खूब रोने लगते हैं, ये लोग न आते तो अच्छा था। और महाप्रभु रोने के लिए इन लोगों को बुला लेते थे। और एक आदमी यहाँ पर और आता था गोविंद के साथ में, एक गोपाल नाम का लड़का, पीछे से वही
गोपाल गुरु,
गोपाल गुरु जी हुए और उन्हीं के शिष्य पीछे से जो हमारी भजन पद्धति के लेखक हैं। इसलिए महाप्रभु जी बस वही दोनों रहते थे और ये रहते थे, कभी कभी कोई और भक्त आ जाते थे और अलग अलग सबको दे दिया था स्थान। इसलिए ये गदाधर पंडित जी को स्थान दिया जो टोटा गोपीनाथ में के पास पर हो। जैसे सनातन गोस्वामी जी ब्रज में कहाँ भी रहते थे तो कहाँ रहते थे, बस जहाँ शंकर जी रहते हैं ना, यदि गोवर्धन में जाएंगे तो चकलेश्वर महादेव, और यदि वृंदावन में जाएंगे तो गोपीश्वर महादेव, और नहीं तो बनखंडी महादेव, यदि कामवन में जाएंगे तो कामेश्वर महादेव,
नंदगांव
में जाएंगे तो
नंदीश्वर,
जहाँ जाएंगे सनातन गोस्वामी से बड़ा बंधु। और सनातन गोस्वामी को यदि कोई कष्ट होता था रहने में, मच्छर वच्छर लगता था,
शंकर जी पूछते हैं कि तुमको मच्छर आज रात में लगाता है, क्या कहें, बहुत मच्छर आज काटा, अब मैं नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूं अपने स्थान में, वृंदावन में जा रहा हूं। कहे नहीं प्रभु, तुम रहते हो तो हरि कथा कुछ होती है, वैष्णव के मुख से हरि नाम सुनते हैं, कृष्ण की गाथा सुनते हैं, इसलिए आप यहीं पर बने रहिए। तो मच्छर जो काटता है, अच्छा आज इसे मच्छर नहीं लगेगा, तो वहां पर मच्छर एकदम आज तक मच्छर ही नहीं लगता। उसी तरह से भक्त लोग, गदाधर पंडित कौन है, हम लोग वहां पर जाकर के महाराज जी के मुख से सुनेंगे, त्रिविक्रम महाराज जी हैं, पूज्यपाद जनार्दन महाराज, भारती महाराज सब लोग आए हैं, विष्णु वैष्णव महाराज सब लोग आए हुए हैं, सन्यासी महाराज जी आए हैं, उनके मुख से हम लोग गदाधर पंडित जी की महिमा सुनेंगे। और यहाँ रह करके कैसे भजन करते थे, महाप्रभु जी उनका भागवत सुनने के लिए आते थे, ये सब विषय का वर्णन वहाँ करते हैं। आप लोग ब्रह्मेश्वर टोटा में यहाँ पर शंकर जी को प्रणाम करके, जम के भी जो ईश्वर हैं प्रणाम करके, उनसे भक्ति की याचना करके, विशेष करके हमारे अनर्थ अपराध इत्यादि को दूर करें, हम लोग पाप कर्म में प्रवृत्त न रह करके कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त हों, ये प्रार्थना करके हम लोग अब चलेंगे जमेश्वर टोटा, वहाँ
टोटा गोपीनाथ,
टोटा गोपीनाथ जी गदाधर शंकर जी
Oh,
মন্ডল মন্ডল কেন স্ত্রীগণকে নিয়ে নাচ করেছেন? কেন কামেতে বশীভূত নয়, কামের দল্পকে খর্ব করিবার জন্য ব্রহ্মাদি জয় সংরূঢ় কন্দত্ব দত্ব দত্ব হা। এ কন্দত্ব মানে কামদেব, এ গল্পিত হয়েছিল। কি গল্প? আমি ব্রহ্মাদি দেবতাগণকে জয় করতে পারি। এই মদন মোহন মানে কি? ওই মদনের গল্প খণ্ডন করিবার জন্য রাসলীলা রচনা করেছি। তাৎপর্য কাম নয়, কাম নয়, শতকোটি গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ। পারবে কেউ বলুন? শতকোটি গোপীর মধ্যে এক এক কৃষ্ণ দুই পাশে দেখছেন, লীলা করছেন। সেই কথা শ্রীমদ ভাগবতে রেমে রমেশ রমার্জিনী ঈশ্বর কৃষ্ণ রেমে রমেশ, কার সঙ্গে? যথা অর্ভক স্বপ্রতিবিম্ব বিভ্রম। অর্ভক মানে বাচ্চা, সে স্কুলে যাচ্ছে, পথি মধ্যে একটা কুয়া পড়ল, কুয়ার দিকে তাকাচ্ছে যে তার মতন একটা ছেলে, তখন এ তাকে ভেঞ্চাচ্ছে, ছেলেটাও তাকে ভেঞ্চাচ্ছে, কেউ কাকে বুঝতে পারছে না। সেরকম ভগবান নিজ রূপ তয়া কলাভি প্রথমে রাধারানীকে প্রকাশ করলেন, রাধারানী কোটি কোটি গোপী তার অঙ্গে থেকে প্রকাশ করলেন, তাদের সঙ্গে নৃত্য করছেন। তখন বলবেন তাহলে মদনকে জয় করলেন কি করি? অবরুদ্ধ সৌরত সুরত ব্যাপারকে স্ত্রী পুরুষ ব্যাপারকে রোধন করলেন, এটা কোনো জীব পারবে না। স্ত্রী সংসর্গে গেলেই সে বিচলিত হয়ে যাবে, কৃষ্ণচন্দ্র তা করেন। অস্কলিত ব্রহ্মচারী রূপেতে দেখালেন যে আমি মদনকে মোহন করতে পারি। এই জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মদন মোহনের উপাস মহারাজ ভালো একটি আখ্যা দিয়েছেন। ওর নাম হচ্ছে কি? ওই ধনুর্দাস। ধনুর্দাস একটি স্ত্রী রূপেতে মোহিত হয়ে পড়েছিল, ও যেখানে যাচ্ছে তাকে দেখে দেখে যাচ্ছে। ওই যে মহারাজ বললেন তার মাথায় ছাতা দিয়ে দেখে যাচ্ছে। রামানুজ হচ্ছেন পতিত পাবন, দেখিলেন যে কি ব্যাপার, এই একটা লোক, এই হাজার হাজার লোক সমাবেশ হয়েছে, এই স্ত্রীটাকে দেখে দেখে যাচ্ছেন। এই মদন মোহনের এক উপাখ্যান দিলেন, তখন তাকে ডাকিলেন, সে ভয় পেয়ে গেছে। দুপুর সময়ে আরে মহাপুরুষ ডাকছেন, যদি আমাকে বলেন যে স্ত্রীটাকে ছেড়ে দিতে বড় মুশকিল হবে। তখন এলেন, কেন তোমার এই অবস্থা? বললেন যে প্রভু এ রূপেতে মোহিত হই, আমি এরকম করছি আর কিছু নেই, এ রূপেতে মোহিত হই। তার বিরুদ্ধেতে নানা রকম লোক নানা রকম উক্তি করলো, সে বলিষ্ঠ দেহি বলিষ্ঠ দেহি। তখন তাকে বললেন যে তুমি সন্ধ্যা সময় এসো, এতে বৈষ্ণব পতিত পাবন, পতিদিকে উদ্ধার করবার জন্য প্রযত্ন তাদের চব্বিশ ঘন্টা। বৈষ্ণবগণ দোষ দেখেন না, প্রক্ষীণ দোষ দূষণা, দোষ দেখা নেত্রটাই তাদের নষ্ট হয়ে গিয়েছে, প্রক্ষীণ দোষ দূষণা। তখন সে এলো, এসে রঙ্গনাথের স্ত্রীরূপ দর্শন করে সেখানে এসে মূর্ছিত হয়। তখন সে বললো যে স্ত্রীটাকে এখনই আমি ত্যাগ করবো। না মা, তোমাকে সে প্রতিভাবে ভজন করছে, তুমি দুইজন উভয় ভজন করো। ভজন করতে করতে এই ধনুর্দাসের দিন দিন অনুরাগ বাড়ছে, দিন দিন অনুরাগ বাড়ছে। দুই চারজন ত্যাগীও ছিলেন,
তারা এসব শুনে তাদের মনেতে ঈর্ষা হল। দেখো গুরু বৃদ্ধই পড়েছেন, একেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, এরই স্কন্ধে হস্তর্পণ করে যমুনা কাবেরী স্নান করতে যাচ্ছেন। আমরা ত্যাগী, আমাদের তো স্পর্শই করছেন না। রামানুজ বুঝতে পেরেছেন একদিন প্রাতকালেতে ত্যাগীগণের পরিধেয় বসন অন্যত্র সরিয়ে রাখিলেন। আমাদের মতন ত্যাগী তো যখন তাদের পরস্পর কাপড় দেখতে পাচ্ছে না, পরস্পর মারামারি গালাগালি দিতে আরম্ভ করল ত্যাগী। আবার যখন সেদিন রাত্রেতে ধনুদাসকে বললেন তুমি আজকে রাত্রে আমার কাছে থাকো, আর বৈষ্ণবগণকে বললেন তোমরা যাও, ধনুদাসের স্ত্রী একা শুয়ে আছে, তোমরা তার অঙ্গ থেকে সব গহনাগুলি খুলে নিয়ে আসো। তখন বৈষ্ণবগণ গেল, গরম সময় দরজা খোলা, সে ভদ্রমহিলা শুয়ে আছেন। তিনি দেখছেন যে বৈষ্ণবগণ এসেছেন, কেন কি উদ্দেশ্যে, দেখলেন যে তা বৈষ্ণবগণ এসে তার অঙ্গ থেকেই, এক পাশের অঙ্গ থেকেই সব গহনাগুলি খুলে নিয়ে যাচ্ছে। তখন মনে করলেন যে আমার কি হবে গহনা, পাশ ফিরলেন যখন বৈষ্ণবগণ বুঝতে পারলেন জেগে গিয়েছে, নিয়েই রামানুজের কাছে অর্পিত করলেন। রামানুজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে ধনুদাস এখন বাড়িতে যাও, আর এদের বললেন যে তোমরা পিছিয়ে পিছিয়ে যাও, ধনুদাস তার স্ত্রীকে কি বলছে শুনিয়ে। এরাও বৈষ্ণবগণ গেলেন, ধনুদাস সব বৃত্তান্ত অবস্থা স্ত্রীর মুখে শুনল, শুনে বলছে যে এখনো তোমার সৌন্দর্য ভোগ করিবার স্পৃহা যায় নাই, এই মুহূর্তেই তুমি চলে যাও। বৈষ্ণবগণ এসে সব কথা রামানুজ আচার্যকে বললেন। রামানুজাচার্য বললেন তোমাদের চিত্তবৃত্তি আর তার চিত্তবৃত্তি দেখো, ত্যাগী হলুন গৃহস্থ হলুন চিত্তবৃত্তির উপরে সব নির্ভর করে, চিত্তবৃত্তির উপরে সব নির্ভর করে। ত্যাগী কিন্তু আমার চিত্তবৃত্তি ভগবানেতে অনুরক্ত নয়, আর আমি পণ্ডিত হলে কি হবে, নমে অভক্ত চতুর্বেদী মদভক্ত শপচপ্রিয়। সুতরাং আমরা অনুরাগটাই দেখিব। মহারাজ বলেছেন কৃষ্ণভক্তকে, কৃষ্ণভক্তকে যে সাং শ্রীষ প্রসাদরূপী মনহত্তু নশক্যতি, নারায়ণের কৃপা যাদের মনকে হরণ করে না তারা হচ্ছেন কৃষ্ণভক্ত। এখন এই জন্য মদন মোহন মদনমোহন যার রূপ সনাত সেবক হন রূপ সনাতন। সুতরাং মদনমোহন যিনি যে মদন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে মোহিত করে, সেই মদনমোহন যার পাপ ভেঙে মূর্ছিত হয়ে পড়ে মদন, তিনি হচ্ছেন আমাদের সম্বন্ধ দেবতা। আর অবিধেয় দেবতা হচ্ছেন গোবিন্দ, তিনি ভক্তগণের সেবা গ্রহণ করছেন। আর প্রয়োজন হচ্ছেন এই গোপীনাথ। একদিন মহাপ্রভু বালিতে খেলা করছিলেন, তখন গদাধর গোস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন প্রভু আপনি বালিতে খেলা করছেন কেন, না দুর্লভ বস্তু পেলে তুমি নিবে? ওই দুর্লভ বস্তু মানে গোপীনাথকে পেয়েছিলেন। গোপীনাথকে বললেন তুমি ক্ষেত্র সন্ন্যাসী না, দুই রকম সন্ন্যাসী, গৃহস্থ হয়ে গৃহস্থ ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া তাকে বলে সন্ন্যাসী, আর সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন ক্ষেত্র সন্ন্যাসী, স্ত্রী ছিল কিন্তু ক্ষেত্র ছেড়ে আর কোথায় যেতেন না। এখন মহাপ্রভু যাবেন বৃন্দাবন, গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী বললেন যে আমিও বৃন্দাবনে যাব, না তোমাকে তো আমি নিব না সঙ্গে,